दरवाजे पर खड़े विश्वनाथ को देखकर सबसे पहले शामली के चेहरे पर राहत उभरी, जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। पिछले एक घंटे से जो बेचैनी उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठी थी, वो अचानक हल्की पड़ गई। विश्वनाथ जी, उसके होठों से लगभग खुशी भरी आवाज निकली। आर्यन भी तुरंत मुस्कुराया, पापा आप आ गए। लेकिन अगले ही पल दोनों की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, क्योंकि विश्वनाथ के चेहरे पर कुछ था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। ना कोई मुस्कान, ना कोई अपनापन, ना कोई थकान भरी गर्मजोशी, बस एक अजीब सी खामोशी, और उन खामोश आंखों में जैसे कोई तूफान छिपा हुआ था। विश्वनाथ की नज़र पहले शामली पर गई, फिर आर्यन पर, फिर दोबारा दोनों पर। वो कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखता रहा, ऐसे जैसे पहली बार देख रहा हो। शामली का दिल जाने क्यों धक से रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। आप ठीक हैं ना, उसने धीरे से पूछा। लेकिन विश्वनाथ ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी दोनों के चेहरों पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, कोई जवाब, कोई सच्चाई या शायद कोई झूठ। आर्यन तुरंत आगे बढ़ा। उसे लगा शायद पापा किसी परेशानी में है। पापा, उसने मुस्कुराते हुए विश्वनाथ के कंधे पकड़ लिए और हमेशा की तरह उन्हें गले लगा लिया। सालों से यही होता आया था। जब भी विश्वनाथ घर लौटते, आर्यन सबसे पहले उन्हें गले लगाता था, और हर बार विश्वनाथ भी उसी गर्मजोशी से उन्हें सीने से लगा लेते थे। लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। विश्वनाथ बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, उसके हाथ वैसे ही नीचे लटके रहे। उसने ना आर्यन की पीठ थपथपाई, ना उसे वापस गले लगाया, बस खड़ा रहा, पत्थर की तरह। आर्यन का दिल एक पल को अटक गया। धीरे धीरे उसने खुद ही गले लगाना छोड़ दिया। उसकी बौहें सिकुड़ गईं। पापा सब ठीक है ना, विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा, बस देखा, फिर बिना कुछ बोले नजरें फेर ली। आर्यन के भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था। शामली भी सब देख रही थी। अब उसकी चिंता और बढ़ चुकी थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। विश्वनाथ ने धीरे से अपना कोट उतारा और सोफे पर डाल दिया, फिर बिना किसी से कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। विश्वनाथ जी, शामली जल्दी से उसके पीछे गई। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हैं? उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विश्वनाथ अचानक एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसके स्पर्श से बचना चाहता हो। शामली वहीं ठिठक गई, उसकी आंखें फैल गईं, दिल के भीतर कुछ टूट सा गया। ये वही आदमी था जो दिन में कई बार उसका हाथ थाम लेता था, जो छोटी सी बात पर भी उसकी चिंता करता था। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर अजनबियत थी, ऐसी अजनबियत जिसने शामली को अंदर तक डरा दिया। मैं ठीक हूं, विश्वनाथ ने सिर्फ इतना कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडापन। और यही ठंडापन सबसे ज्यादा डरावना था। फिर वो सीधे आगे की तरफ बढ़ गया। शामली और आर्यन दोनों वहीं खड़े रह गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में सिर्फ दीवार खड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। ये क्या था, आखिर आर्यन बोला। शामली ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कुछ हुआ है, बहुत बड़ा कुछ। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। शाम तक तो सब ठीक था। सुबह जब विश्वनाथ ऑफिस गया था, तब उसने जाते जाते उसके माथे को चूमा भी था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? आखिर कुछ घंटों में सब कैसे बदल सकता था? वो बार बार याद करने लगी। क्या उसने कोई गलती की थी? क्या किसी ने कुछ कहा था? क्या बिजनेस में कोई समस्या आ गई थी? लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसी समय बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। शामली की बेचैनी और बढ़ गई। मुझे उनसे बात करनी होगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके अपने शब्दों में भी भरोसा नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया, फिर कुछ पल तक सिंक पर दोनों हाथ टिकाकर खड़ा रहा। आईने में अपना चेहरा देखा, लाल आंखें, थका हुआ चेहरा और भीतर जमा हुआ दर्द। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, गुस्सा इस बात का कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, और उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का कि उसका दिल बार बार वही दृश्य याद कर रहा था। उसने शावर खोल दिया, ठंडा पानी उसके सिर और कंधों पर गिरने लगा, लेकिन उसके भीतर की आग कम नहीं हुई। उसने आंखें बंद कर ली और फिर वही दृश्य सामने उभर आया, शामली की नम आंखें, आर्यन का उसे अपनी तरफ खींचना, उसके कंधों पर रखा हाथ, दोनों का एक दूसरे के करीब खड़ा होना। विश्वनाथ ने तुरंत आंखें खोल दी, लेकिन तस्वीर गायब नहीं हुई, वो उसके दिमाग में जैसे छप चुकी थी। फिर अचानक एल्बम की तस्वीरें याद आने लगीं। कॉलेज का कैंपस, हंसते हुए चेहरे, साथ बिताए हुए पल और फिर अभी का दृश्य। उसका दिमाग दोनों चीजों को जोड़ने लगा। भले ही उसके पास कोई सबूत नहीं था, भले ही सच्चाई कुछ और हो सकती थी, लेकिन घायल भरोसा अक्सर तर्क नहीं सुनता, वो सिर्फ दर्द सुनता है। पानी लगातार उसके ऊपर गिर रहा था, लेकिन उसके भीतर सवाल और गहरे होते जा रहे थे। अगर सब सामान्य था तो बताया क्यों नहीं? अगर कुछ नहीं था तो छुपाया क्यों गया? उसने दोनों मुट्ठियां भींच ली, फिर तुरंत खुद को रोक लिया। नहीं, वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। सिर्फ एक तस्वीर या एक दृश्य पूरी सच्चाई नहीं हो सकता। उसे जवाब चाहिए थे, सिर्फ जवाब। लेकिन दिल और दिमाग के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक हिस्सा कह रहा था कि शामली और आर्यन पर भरोसा करो, दूसरा हिस्सा बार बार वही तस्वीरें दिखा रहा था, और जितना वो उन्हें भुलाने की कोशिश करता, वे उतनी ही स्पष्ट होकर लौट आती। बाथरूम के बाहर शामली कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी कि विश्वनाथ के भीतर कुछ टूट गया है, लेकिन क्या? ये सवाल अब उसे अंदर से खाए जा रहा था। और बाथरूम के भीतर शावर के नीचे खड़ा विश्वनाथ अब भी आंखें बंद किए उसी दृश्य को देख रहा था। आर्यन का शामली को संभालना, उसका उसके करीब खड़ा होना और फिर खुद का दरवाजे पर पहुंचना, वो दृश्य बार बार उसके मन में घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भूलने ही नहीं दे रहा हो। और इसी के साथ उसके दिल में उठी पहली दरार थोड़ी और गहरी हो गई।